आमाल बाप साथ। आला काहिन ने स्टीफन से पूछा,
क्या यह सब चीजें सच हैं?
स्टीफन ने जवाब दिया,
मेरे यहूदी बाप और भाइयों, गौर से सुनो। खुदा जुलजलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जबकि वह मेसोपोटामिया में थे। ये उनके हारान में रहने से पहले की बात है। खुदा ने अब्राहम से कहा, तुम अपने मुल्क और लोगों को छोड़ो और ऐसे मुल्क को चले जाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए अब्राहम ने कुलदिया को छोड़ा और हारान में जा बसा, और वहां उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको उस मुल्क में लाकर बसा दिया जहां अब तुम रहते हो। लेकिन खुदा ने उसको यहां की जमीन की कोई मीरास नहीं दी, हत्ता कि एक फीट जमीन भी नहीं दी। लेकिन खुदा ने इब्राहिम से वायदा किया कि आइंदा उसको और उसके बच्चों को ये जमीन देगा। उस वक्त इब्राहिम के कोई औलाद नहीं थी, और यही खुदा ने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी नस्ल दूसरी मुल्क में अजनबी की तरह रहेगी और वहाँ के लोग उनको गुलामी में रखेंगे और उनसे 400 साल तक बुरा सलूक करेंगे। लेकिन मैं उस कौम के लोगों को सजा दूंगा जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया। और खुदा ने यह भी कहा, उसके बाद तुम्हारी नस्ल वहाँ से चली आएगी और उसी जगह मेरी इबादत करेगी। खुदा ने इब्राहिम से एक अहद लिया, और उस अहद की निशानी थी खतना। और जब इब्राहिम का बेटा हुआ तो उसने उसकी पैदाइश के 8वें दिन खतना करवाया। ये लड़का इसहाक कहलाया। इसहाक ने अपने 12 लड़कों का खतना करवाया जो बाद में 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। ये बुजुर्ग बाप अपने भाई यूसुफ से हसद करते थे। इन्होंने यूसुफ को बतौर गुलाम बनाकर मिस्र में फरोख्त कर दिया, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ था। यूसुफ ने कई तकालीफ का सामना किया, लेकिन खुदा ने उसको उन तमाम तकालीफ से बचाया। फिरौन जो मिस्र का बादशाह था, यूसुफ को चाहता था, और उसने यूसुफ को मकबूलियत दी। ये मकबूलियत उसकी दानाई की बिना पर जो खुदा ने यूसुफ को अता की थी। फिरौन ने यूसुफ को मिस्र का सरदार बनाया और यूसुफ को फिरौन के महल का हाकिम भी। मिस्र और कनान में जबरदस्त कहत पड़ा जिसकी वजह से बड़ी मुसीबत आई, और हमारे आबाओ अजदाद को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। लेकिन याकूब ने सुना कि मिस्र में अनाज जमा है, तो उसने अपने बुजुर्ग आबाओ अजदाद को रवाना किया। ये मिस्र के लिए पहला सफर था। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा सफर किया। उस मर्तबा यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया कि वह कौन है, और फिरौन उस तरह यूसुफ के खानदान से वाकिफ हुआ। तब यूसुफ ने चंद आदमियों को अपने बाप याकूब को मिस्र को बुलाने के लिए भेजा, और साथ ही अपने तमाम रिश्तेदारों को भी जो तकरीबन 75 की तादाद में थे। याकूब मिस्र को गए, और याकूब और उसके बाप दादा मिस्र में उनके मरने तक रहे। बाद में उन नाशों को सिक्किम में मुंतकिल किया गया और उस जगह दफन किए गए जिसे इब्राहिम ने चांदी देकर हमूर के बेटों से खरीद लिया था। जब मिस्र में इसराइलियों की तादाद बढ़ गई और उनकी आबादी बढ़ी, इस तरह खुदा ने इब्राहिम से जो वायदा किया था उसके पूरे होने का वक्त करीब आ रहा था। तब एक दूसरा बादशाह मिस्र पर हुकूमत करना शुरू कर दिया। उसको यूसुफ के मुतालिक कुछ मालूम न था, वह यूसुफ को न जानता था। उस बादशाह ने हमारे आबाओ अजदाद से ऐसी बदसलूकी की कि उसने उन पर जबरदस्ती की, उनके बच्चों को बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे मौका पर मूसा पैदा हुआ जो बहुत खूबसूरत लड़का और खुदा को प्यारा था। वह 3 महीने तक अपने बाप के घर में पलता रहा। जब उन्हें भी बाहर फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उन्हें लिया और उस लड़के की इस तरह परवरिश की जैसे वह उसका अपना लड़का हो। मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई। वह बहुत ज्यादा जहीन और कादिरुल कलाम था। जब मूसा तकरीबन 40 साल के हुए तो उसके दिल में ये ख्याल आया कि वह अपने हम वतन इसराइली भाइयों से मिले। मूसा ने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली से बदसलूकी कर रहा है, और मूसा ने इसराइली की तरफदारी की, और मूसा ने उस मिस्री को इसराइली को सताने पर सजा दी और इस तरह मारा कि वह मर गया। मूसा ने महसूस किया कि इसराइली बिरादरी ये समझेंगे कि खुदा उनको बचाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो लोग नहीं समझे। दूसरे दिन मूसा ने देखा कि दो इसराइली लड़ रहे हैं, और मूसा ने दोनों में सलामती और मुसालिहत की, ये कहते हुए कोशिश की कि तुम दोनों आपस में भाई हो, फिर क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। उनमें से एक जो गलती पर था मूसा को ढकेल दिया और मूसा से कहा, क्या किसी ने तुमको हमारे दरमियान मुंसिब या बादशाह हुक्मरान मुकर्रर किया है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो जिस तरह तुम कल उस मिस्री को मार दिया था? जब मूसा ने उस आदमी को इस तरह कहते सुना तो वह मिस्र छोड़ दिया और मिद्यान में रहने चले गए। वह मिद्यान में एक अजनबी की मानिंद था। मिद्यान में रहने के दौरान मूसा के दो लड़के हुए। 40 साल तक मूसा कोहेसीना की रेगिस्तान में थे, तब उसके सामने एक फरिश्ता शालापो झाड़ी में जाहिर हुआ। मूसा देखकर बहुत हैरत ज़दा था। वो देखने को करीब हुआ तो एक आवाज़ सुनी जो खुदावंद की आवाज़ थी। खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हारे आबाओ अजदाद का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। और मूसा डर से कांपने लगा। वह झाड़ी की तरफ देखते हुए भी खौफजदा था। तब खुदावंद ने उनसे कहा, अपने पैरों से जूते निकाल दो, क्योंकि ये जगह जहाँ तुम खड़े हो मुकद्दस है। मैं देख चुका हूँ कि मेरे लोग मिस्र में मुसीबत जदा हैं और उन्हें दुख से कराहते सुना है। मैं उन्हें बचाने आया हूँ। मूसा आओ, मैं तुम्हें मिस्र वापस भेजूँगा। मूसा वही आदमी है जिन्हें इसराइलियों ने रद्द किया था उन अल्फाज से कि किसने तुम्हें हमारे मुनसिफ और हुक्मरान बनाया। हाँ, मूसा ही वह आदमी था जिसे खुदा ने हाकिम और निजात दहिंदा बनाकर भेजा था। खुदा ने मूसा को फरिश्ते की मदद से भेजा था। वह फरिश्ता शालापोश झाड़ियों में उनके लिए जाहिर हुआ था। यही शख्स मूसा कहलाया और लोगों को मिस्र के बाहर ले गया। उसने ताकतवर चीज़ें और मौजज़े दिखलाए, और मूसा ने ये सब चीज़ें मिस्र में बहरे कुलजम के पास कीं, और 40 साल तक सेहरा में भी रहा। ये वही मूसा है जिसने इसराइलियों से कहा था कि खुदा तुम्हारे लिए एक नबी भेजेगा जो मुझ जैसा और तुम में से ही होगा। ये वही मूसा है जो आदमियों के साथ बियाबान में था, और वह उस फरिश्ते के साथ था जिसने कोहे सीना पर उससे कलाम किया, और हमारे बाप दादा के साथ था। मूसा को खुदा की तरफ से अहकाम मिले और उसने हम तक पहुँचाए, लेकिन हमारे बाप दादा ने मूसा का कहना नहीं माना और उसका इनकार कर दिया, और उनको दोबारा मिस्र चले जाने के लिए कहा। हमारे बाप दादा ने हारून से कहा, हम ये नहीं जानते हैं कि मूसा का जो हमें मिस्र से बाहर निकाल लाया है क्या हुआ, इसलिए कोई ऐसा खुदा बनाया जाए जो हमारी रहनुमाई करे। लोगों ने एक बछड़े का बुत बनाया और उस बुत की कुर्बानी पेश की, और लोग उसकी तकारीब मनाने में खुश थे जो खुदा उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। खुदा ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और उन्हें उजरावे फिलकी झूठे खुदाओं की इबादत करने से ना रोका। ये नबियों की किताब में लिखा है। खुदा कहता है, ऐ इसराइल के घराने, क्या तुमने बियाबान में 40 बरस मुझको जबे और कुर्बानियां पेश की, और तुम अपने साथ मौलिक खैमे को लिए फिरते थे और अरफान देवता के तारे को लिए फिरते थे। गोया तुम उन बुतों के लिए फिरते थे जिन्हें तुमने इबादत के लिए बनाया था, इसलिए तुम्हें बाबुल से दूर निकालता हूँ। शहादत का खैमा बियाबान में हमारे बाप दादा के पास था। खुदा ने मूसा से कहा था कि किस तरह खैमा बनाएं, और खुदा के बनाए हुए तरीके के मुताबिक इसने खैमा बनाया। बाद में हमारे बाप दादा ने यीशु जो सोवा की कयादत में दूसरी कौमों की ज़मीनों को फतह किए, खुदा ने दूसरी कौमों को बाहर किया और हमारे आबाओ अजदाद जमीन पर उसी खैमे के साथ दाखिल हुए जो उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से लिया था। उन्होंने उसको वैसा ही रखा जो दाऊद के जमाने तक रहा। खुदा दाऊद से बहुत खुश था। दाऊद से खुदा ने कहा, वो याकूब के खुदा के लिए एक मकान हैकल बनाने की इजाजत दे। लेकिन ये सुलेमान था जो खुदा के लिए हैकल बनाया। लेकिन खुदाए ताला उस घर में नहीं रहता जो इंसान के बनाए हुए हैं। चुनांचे नबी कहता है, खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पैरों तले की चौकी है, और तुम किस किस्म का घर मेरे लिए बनाओगे? ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां मैं आराम कर सकूं। याद रखो, ये सब चीजें मेरी ही बनाई हुई हैं।
तब स्टीफन ने कहा,
ऐ यहूदा, तुम हर वक्त रूहुल कुद्दूस की मुखालिफत करते हो, खुदा की नहीं सुनते। तुम हमेशा रूहुल कुद्दूस के खिलाफ हमारे आबाओ अजदाद की तरह खड़े रहते हो। तुम्हारे बाप दादा ने हर नबी को सताया। उन नबियों ने कहा था कि एक परहेजगार आएगा। तुम्हारे बाप दादा ने उन नबियों को कत्ल किया, और अब तुम परहेजगार के खिलाफ हो गए और उसको कत्ल कर देना चाहते हो। तुम वह लोग हो जो मूसा की शरीयत को पाए और ये कानून खुदा ने उसके फरिश्तों के जरिए दिया, लेकिन तुमने उसकी अतात नहीं की।
यहूदी कायदीन ने स्टीफन को ये कहते सुना और गुस्से से पागल हो गए। वो गुस्से में स्टीफन के खिलाफ दांत पीसने लगे, लेकिन स्टीफन रूहुल कुद्दूस से मामूर था। उसने आसमान की तरफ देखा जहां उसने खुदा के जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने तरफ खड़ा देखा। स्टीफन ने कहा,
देखो, मैं आसमान को खुला देखता हूँ और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी जानिब खड़ा देखता हूँ।
यहूदी कायदीन बुलंद आवाज से चिल्लाना शुरू किया और अपने कानों को बंद कर लिया। सब के सब मिलकर स्टीफन पर झपट पड़े। वो उसको शहर से बाहर ले आए और उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वो लोग जो स्टीफन के खिलाफ गवाह थे, अपने कपड़े उतार कर साउल नामी जवान के पांव के पास रख दिए। जैसे जैसे वो स्टीफन पर पत्थर फेंकते थे, वो ये दुआ करता रहा कि
अरे यीशु, मेरी रूह को ले ले।
वो घुटनों के बल गिरा और बुलंद आवाज से पुकारा,
खुदावन, उनको इस गुनाह का जिम्मेदार ना बना।
इतना कहकर वो मर गया।